ये आकाशवाणी है। अब आप अमन यादव से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज रात 8 बजे तक लगभग 62.84% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। 8 बजे तक आंध्र प्रदेश में 68.12, बिहार में 55.90 और तेलंगाना में 61.39% वोट डाले गए। जम्मू कश्मीर में 36.58%, झारखंड में 63.37 और मध्य प्रदेश में 68.63% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में 52.75, ओडिशा में 63.85, उत्तर प्रदेश में 57.88 और पश्चिम बंगाल में 75.94% वोट डाले गए। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5, झारखंड और ओडिशा की 4-4 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। चौथे चरण में 1717 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर हैं। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते सार्वजनिक बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेगा रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। श्री मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। श्री मोदी आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे और कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभाओं को संबोधित किया। श्री मोदी ने सारण में कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तथा रोजगार के और अवसरों का सृजन हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली में चुनाव प्रचार किया। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार भाजपा सत्ता में नहीं आएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह समझौता बड़े निवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत को मध्य एशिया से जोड़ेगा। श्री जयशंकर ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह समझौता एक रणनीतिक कदम है और ये कराची के साथ साथ पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाहों को दरकिनार करते हुए ईरान के माध्यम से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोलेगा। उन्होंने कहा कि ये व्यापारिक समुदायों के लिए संवेदनशील और व्यस्त फारस की खाड़ी और होर्मुज़ जडमरु मध्य से वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए अवसरों का एक नया द्वार खोलेगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं सहित 3 नक्सलवादी मारे गए। पुलिस अधीक्षक निलोत्पल ने बताया कि खुफिया जानकारी के अनुसार पेरिमेली दलम के कुछ सदस्य भामरागढ़ तालुका में कट्टरगंटा गांव के नजदीक जंगल में शिविर लगाकर जवाबी हमले की योजना बना रहे थे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में चिदानगर जंक्शन में 100 फुट ऊंचे विज्ञापन लगाने वाले बोर्ड के पेट्रोल पंप और आसपास मौजूद घरों के ऊपर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और हवाओं के कारण बोर्ड उखड़ गया। पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए तैनात किया गया है। घायलों के लिए एम्बुलेंस तैनात की गई है और घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा आज 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया। सीबीएसई ने बताया कि 12वीं कक्षा में कुल 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वहीं 10वीं कक्षा के छात्रों का परिणाम कुल 93.60% रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के अथक परिश्रम और उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में परिवार और शिक्षकों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू अपडेन की जोड़ी ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इस जोड़ी ने इटली के फ्रांसिस्को पसारो और मोटियाओ अर्नाल्डी की जोड़ी को 6-2, 6-2 से हराकर प्री क्वार्टर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।